ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ।
शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की, सतगुरु बाबा की सारी मुरली शिक्षाओं भरी है। हम बच्चे जैसे ही ब्राह्मण बने, बाबा ने हमें गिफ्ट दी। कौन सी गिफ्ट दी बाबा ने हम बच्चों को? हमारा अलौकिक जन्म होते ही दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा ने दी। तो दिव्य बुद्धि से हमें कार्य करना है। दिव्य बुद्धि अर्थात जिसमें रॉन्ग राइट की सही पहचान हो, गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सबकी सही पहचान हो और उस अनुसार हमारा कर्म हो, हमारे वचन हो, हमारी सोच हो। तो इस दिव्य बुद्धि के आधार से ही हमें सब कुछ करना है। लेकिन कई बच्चे दिव्य बुद्धि को यूज नहीं करते और अपनी मनमत चलाते हैं। तो मनमत भी कितने प्रकार की होती है। ज्ञान में ही अपनी मनमत चलाते हैं। कौन सी मनमत? ड्रामा की। बाबा कहते हैं ना, सब ड्रामा अनुसार होता है। लेकिन ड्रामा अनुसार का मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि कोई भी प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है। कोई कहे ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, तो बैठ जाओ वहीं पर। ड्रामा में नहीं होगा तो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ फर्स्ट। तो अपने ऊपर ध्यान देना है। आज बाबा ने शब्द कहा है, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, वो सबके अंतर को जानता है। बाबा कहते हैं मुझे क्या पड़ी है सबके अंदर को जानने की, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। तो मैं थोड़ी कोई उसको फल देता हूँ, तो धर्मराज द्वारा मिलता है। लेकिन अंतर्यामी बाबा कहते तुम बच्चे हो, तुम अपने अंदर को जानते हो। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे किसको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। हाँ, तो आज बाबा ने सारी मुरली इसी पर चलाई है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 4/9/2025 है। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। हेडिंग ही ये है। दादी जी से किसी ने पूछा, बड़ी दादी से किसी ने पूछा कि बाबा कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस रखो। तो मुझे अच्छी तरह याद है दादी ने उस समय कहा, नहीं, बाबा कहते हैं लव इज द लॉ, प्यार ही लॉ है, प्यार से समझाना है। अगर नहीं समझता है तो छोड़ दो। हम अपना कोई विकर्म न बनाए गुस्सा करके या डांट करके, हम न बनाए। तो प्यार ही लव इज लॉ, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार है। तो परिवार में क्रोध नहीं चलता है, प्यार ही चलता है। प्यार से परिवर्तन कर सको तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर कई पुलिस वाले बाबा के पास आते हैं, बाबा को कहते हमको तो मारना पड़ता है, किसी ने चोरी की, किसी पकड़े गए। तो वो झूठ बोल देते हैं, तो हमको मारना पड़ता है उनको सच निकलवाने के लिए। तो बाबा ने उसकी भी युक्ति बताई है। बाबा के मुरली से अब सुनेंगे, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपना रजिस्टर, मन वचन कर्म का रजिस्टर होता है ना, तो उस रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आज बाबा ने एक और शब्द ऐड किया है आसुरी गुण में, मूडी। मूडी बनते हैं, अभी देखो तो जोर जोर से हंस रहे हैं, अभी देखो तो एकदम शांत, अभी देखो तो रो रहे हैं, अभी देखो तो गुस्सा कर रहे हैं। अरे भाई, कितने मूड बदलते रहते हैं। हमारे जगदीश भाई ने किताब भी लिखी है, 16 प्रकार का मूड, और उस समय चेहरा कैसा बन जाता है हर एक मूड के अनुसार, वो भी चेहरे भी बनाए हैं किताब है। तो बाबा कहते हैं, मूडी तो नहीं हूं, ये भी अपने आप से पूछो। कभी तो इतना प्यार से बात करेंगे, कभी तो अगर बात भी करो मुंडी हिला देते हैं, जैसे कि सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, तो मूडी हो गए। तो मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, कुछ भी कह दिया किसने पर हम क्यों बिगड़ जाए, हम अपना पाप कर्म क्यों बनाएं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। तो गीत कौन सा होगा, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है, घर के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करो, अलबेलापन नहीं लाओ। हाँ बाबा तो कहते रहते हैं, मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा, तो ये तो गफलत हो गई ना, उसमें गफलत नहीं करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ, ये बाबा का डायरेक्शन है, सबको मैसेज पहुंचाओ। तो बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, लाखों करोड़ों को मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे। अभी भले मैसेज देते जाओ, उनके बीज तो उनके अंदर पड़ेगा ना, एक दिन आ जाएंगे। जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे, बहुत बच्चे बाबा के होंगे तो फिर बहुतों को मैसेज मिलता जाएगा। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, मैसेज है बहुत सहज। कौन सा संदेश हम सबको देते हैं, बहुत सहज से सहज संदेश सबको, फिर सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्म इंद्री से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करो। बस ये मैसेज देना है सबको। पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, बाबा ने तो दी है ये दिव्य बुद्धि, तो बुद्धि चाहिए रॉन्ग राइट समझने की। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए, हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये समझ तो मिल गई है। दिल में संकल्प आता है, कई बार गुस्सा करे, ये ऐसा व्यवहार करता है मैं उस पर गुस्सा करूं, अंदर मन में आता है, दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है ना, क्या मिली है? अगर गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? तो पाप बन जाएगा। अब वो गुस्सा कर रहा है तो उसका पाप तो बन रहा है, पर मैं भी गुस्सा करके अपना पाप क्यों बनाऊं? इसलिए बाबा कहते हैं अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, अंदर में समझ तो है ना। तो बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। जब उनको समझानी मिलती है, भाई चलो उसने गुस्सा किया तुमने क्यों किया, अच्छा अभी नहीं करूंगा आगे, और बार बार यही कहता रहेगा अभी आगे नहीं करूंगा, तो अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी, फिर नहीं करूंगा। बाबा कहते चेक करो फिर चेंज करो, ऐसे नहीं खाली चेक करो, हाँ मैंने गुस्सा किया मुझे नहीं करना चाहिए, पर आगे फिर चेंज भी तो हो ना, गुस्सा ना करो। तो फिर ऐसे कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते ये पाप ही नहीं है, कोई भी विकार के वश कर्म ये पाप के खाते में जाता है, लेकिन कई ये समझते ही नहीं है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पाप बनाते हैं, समझते ये तो जरूरी है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं जो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को भी पाप नहीं समझते। भगवान तो कहते हैं काम विकार तो सबसे बड़ा पाप है, विकार को भी पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है ये बड़े से बड़ा पाप है काम विकार, इस पर तुम्हें जीत पानी है, और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं, आवाज लगा, जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड द फादर, ऐसे कहते हैं रिमेम्बर गॉड द फादर। भारत में कहेंगे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। वो समझते हैं कि ये गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे? चलो गॉड फादर को याद भी किया तो कहाँ जाएंगे मरने के बाद, ये तो समझते नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके, परम धाम को आत्मा कोई जा नहीं सकती, चलो भगवान को याद करो, पर परम धाम तो जा नहीं सकती आत्मा। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए, अंत के समय भी बाबा की याद तब रहेगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा। तो अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं ना, बाबा कहते हैं जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती है, आत्मा ही कहती है, शरीर नहीं कहता है भगवान को याद करो, आत्मा कहती है, आत्मा को कहती है कि अब भगवान को याद करो। आत्मा आत्मा को कहती है ना भगवान को याद करो, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। उस समय वो आत्मा बोलती है भगवान को याद करो, परमात्मा नहीं कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो, ये एक कॉमन रसम है। अंत में भगवान को याद करो ये सभी कहते हैं, तो ये जिसे कॉमन रसम है, ये एक कॉमन रसम है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है। क्यों याद करते हैं? क्योंकि एक तो समझते हैं कि ईश्वर के पास जाना है तो ईश्वर को याद करना है, दूसरा बाबा कहते हैं मरने समय डर रहता है ईश्वर का कि भगवान को याद करेंगे तो हमारे पाप दर्द होंगे, तो ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं, बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। इसलिए मृत्यु का भी बहुत डर रहता है, इसीलिए क्योंकि समझते हमने इतने पाप किए हैं तो हमें धर्मराज द्वारा भगवान सजा देगा, तो डरते हैं मृत्यु से, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ या विकर्म। याद में रहे जो कर्म करते हो वो अच्छे कर्म होते हैं। बाबा की याद में जो कर्म किया वो सत्कर्म बन जाता है, बाबा की याद भूली देह अभिमान में आए तो विकर्म बन जाता है। याद में रहे जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, क्या करो क्या नहीं करो, बाबा की मुरली में सारी श्रीमत मिलती रहती है। कहाँ बुलावा होता है ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। निमंत्रण कहीं मिलता है लेकिन वहां जाना ठीक नहीं है तो फिर नहीं भी जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि निमंत्रण मिला है तो जाना ही है। तो बाबा कहते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बात में पूछते रहो, हर बात में बड़ों से राय लो, पूछो क्या करें हम, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है कि पहले प्यार से समझाओ उस चोर को, पहले प्यार से समझाओ, अगर सच न सुनाए सच न करे तो फिर बाद में मार, पहले प्यार चलो, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है, अगर उसको मारेगा नहीं तो वो सच बतलाएगा नहीं, पहले प्यार से बात करो, प्यार से कहो कि सच बताओ मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु फिर भी सच नहीं बताता है तब फिर मारना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस की नौकरी से ही हटा देते हैं ना, तो फिर मार। फिर प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि हाथ नहीं आ सकते हैं प्यार से समझाने से, परंतु वो प्यार भी कैसे देना है, प्यार भी नफरत अंदर में भर करके प्यार से समझाना नहीं है। तो बाबा कहते वो प्यार भी कैसे देना है, उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे, उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो वो समझ जाएगा जरूर। हम तो देखते हैं ये जाते हैं ना जेलों में, बहुत सेवा करते हैं तो जेलों में जाते हैं और वो कैदियों को राखी पर उनको बांधते हैं राखी, तो बहुत प्यार से कर्मों की गति समझाते हैं, अंदर में भावना तो शुद्ध रहती है कि ये बदल जाए। फिर राखी जब बांधते हैं तो वो पैसा देते हैं, तो हम लोग कहते पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम बस तुमने जो भूल की है वो चिट्ठी में लिख करके दो और भगवान को अर्पित करो, भगवान को ये भूल अपनी बताओ। तो सचमुच कई लिख के देते हैं, और आंखों में से आंसू आते हैं, पश्चाताप के आंसू तो आते ही है ना, तो वो जेलर लोग कहते हैं हम लोग तो इनको मार मार करके क्या नहीं करते, लेकिन ये सच नहीं बताते। और आप लोगों ने तो ऐसा उनको प्यार दिया और शुभ भावना रखी, तो वो सच बता करके, भले नाम नहीं कहते, नाम नहीं लिखो पर सच बताओ और आप यहाँ रखो, यही तुम्हारी भगवान के लिए जो जो भेंट है वो होगी। तो फिर लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे, ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं ऐसे वो समझेंगे। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, भगवान प्यार का सागर है, कितनी ताकत है उसमें, सबको वर्षा देते हैं, कौन सी ताकत है, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते क्या होगा, पूरा वर्षा बाबा से प्यार का लेते हो, तो लेते लेते नंबर वार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे, सब प्यारे बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो बाबा श्राप नहीं देते हैं लेकिन समझाते हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। हाँ, ये श्राप नहीं है, ये समझानी है, सावधानी है कि नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाती है, कहते हैं ना चेहरा मन का दर्पण है, अगर मन में भी कुछ आता है वो चेहरे पर तो दिखाई देता है, तो मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया वो गलत काम तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, आरती में देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वो महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, आरती में आता है मैं मूर्ख खल कामी पापी, अपने आप को अपनी चलन का भी वर्णन करते हैं, और फिर कहेंगे कृपा करो भरता, तो अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, हाँ देवताओं जैसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर, फिर बन जाएंगे देवता जरूर, तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, चाल चलन ऐसी रखो, कैसी रखो जो, तो तुम ये बन जाएंगे, ऐसी चाल रखो देवताओं जैसी तो तुम देवता बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, कितनी बड़ी बात है, हाँ संपूर्ण निर्विकारी, स्वप्न मात्र तक भी कोई विकार न हो तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, हाँ किसने कुछ कह दिया तुरंत बिगड़ पड़ते हैं, तो बाबा कहते अपनी जांच करो कहीं मैं छोटी बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं बनता हूं, अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, ये कोई नया पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, अनेक बार किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है देवता, बनाने वाला भी हाजिर है, देवता बनाने वाला भी हाजिर है, कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ, कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो जरूर आकर के लेंगे, पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं, बाबा पुरुषार्थ भी कराते, फिर बेफिक्र भी रहते हैं, पता है जो आज इसका जैसा भाग्य होगा, जितनी इसकी समझ होगी वो करेंगे, बेफिक्र भी रहते हैं, क्योंकि ड्रामा की ऐसी नूंद है, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, ड्रामा की ऐसी नूंद है। कोई कहते हैं, अभी कोई उसका उल्टा अर्थ उठाते हैं ड्रामा का, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा हमको, वही पुरुषार्थ मेरा अगर अच्छा पाठ चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है कि उनकी तकदीर में नहीं है, जो ड्रामा ड्रामा के इस बात में केवल करते रहते और पुरुषार्थ नहीं करते, तो समझा जाता है इसकी तकदीर में नहीं है। तो पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तो बाबा किसका मिसाल दे रहे, एक बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया बाबा को, ड्रामा ने पुरुषार्थ नहीं कराया तो छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, कई ऐसे कहते हैं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है ना लक्ष्मी नारायण, बैज तो तुम्हारे पास है, जैसे अपना पोता मिल देखते हो तो बैज को भी देखो, क्योंकि बैज में टीचर्स की बैच में तो लक्ष्मी नारायण है, और भाई जो समर्पित है उनकी बैच में श्री कृष्ण है, तो बाबा के उसको देखते रहो, तो जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई ईविल बात न निकले, ईविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे, हर एक यही बुद्धि में रखे, मुझे कोई ईविल बात, कोई अपशब्द, कुछ ऐसा गलत शब्द जो बाबा का ज्ञान युक्त शब्द नहीं है वो नहीं बोलना है। और तो बाबा कहते अगर कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोलेंगे ईविल तो कान सुनेंगे कैसे, फिर वो कोई सुनेगा नहीं। सत्युग में तो सब दैवी गुण वाले होते हैं, ईविल कोई बात नहीं, इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही तो पाई है, देवताओं ने ऐसे ही थोड़ी पद पा लिया, बाप द्वारा ही लक्ष्मी नारायण ने पद पाया है। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, बाबा को याद करने में नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। संस्कार तो आत्मा ले जाती है, सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा, झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना, सन्यासियों की भी एक शाखा है ना सन्यास धर्म, तो वो भी बढ़ता जा रहा है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे बाबा के पास, सब थोड़ी इकट्ठे आएंगे, और ड्रामा अनुसार जिसका जब पाठ होता है परमधाम से, उस समय वो आत्मा आती है तो सब थोड़े एक ही साथ सृष्टि मंच पर उतरते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे, आएंगे फिर नंबर वार, ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएगा, वो ग्रीन रूम में बैठते हैं तैयार हो करके, जैसे उनका पाठ आना होता है फिर स्टेज पर आते हैं, तो ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएगा, अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने, वो है हद का नाटक, ये है बेहद का नाटक, तो बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है, ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबर वार आते जाते हैं, तो पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके, तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबर वार, सारे देवताएं भी एक साथ नहीं आ जाएंगे, नंबर वार आएंगे। झाड़ के रास को भी समझना है, बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं, इनकी भेंट फिर कल्प वृक्ष के ज्ञान की भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है, निराकारी झाड़ परमधाम में झाड़ है, वहां भी आत्माएं कैसे नंबरवार स्थान लेती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि झाड़ उसके अंदर है, वो तो केवल जैसे बीज डालो तो दो पत्ते निकलते हैं ना, ये पहला कदम। तो बाबा कहते कोई झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। अब ये शिव बाबा बीज है, तो शिव बाबा में कोई झाड़ समाया हुआ नहीं है बीज में, परंतु सारे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, कल्प वृक्ष को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है। परम धाम में आत्माओं का भी जो झाड़ है वो ऊर्ध्व मूल है, उनका मूल ऊपर है, अदर शाखाएं शाखाएं नीचे है, इस सृष्टि पर आती है। तो बाबा कहते हैं इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है, तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारा विश्व पवित्र हो जाता है, पर तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना, तो तुम पवित्र बनते हो तो तुमको सृष्टि भी पवित्र चाहिए। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, तो चैतन्य है आत्मा, आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, हर एक का अपना अपना चक्र है, कौन कितने जन्म कौन कितने जन्म लेते हैं, पर हमारा 84 का चक्र पूरा होता है तो सबका चक्र भी पूरा होता है। सब पावन बन जाते हैं, ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है, रील घूमता जाता है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कब होगा, कल्प के बाद होगा, वही सीन दोबारा उस कल्प में रिपीट नहीं होती है, कल्प के बाद ही रिपीट होती है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो एक्टर्स तो करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं, कितने नाटक होते, चलो 2 घंटे का नाटक 3 घंटे का नाटक, लेकिन ये तो कितना बड़ा नाटक है बेहद का। वो एक्टर्स तो करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं, अब ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट भरा हुआ है, उसके अंदर नेचुरल पार्ट भरा हुआ है। ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सब सुखी बन जाते हैं। जैसे बाप आते हैं हमको सुख देते हैं, तो 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हैं, खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वो तो सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो फिर दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है, क्रोधी के आगे आने से दूसरे को भी क्रोध आ जाता है, वो क्रोध का भूत उसमें भी प्रवेश हो जाता है। ताली तो 2 हाथ से बजती है ना, वहां ऐसे नहीं होगा, सत्युग में ऐसे नहीं होता है। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम क्या करो, कोई गुस्सा करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, फूल बरसाओ। हाँ कोई सचमुच फूल नहीं बरसाना है, पर शुभ भावना शुभ कामना उन पर रखनी है। तो फूल चढ़ाओ, बाप प्यार से समझाओ, ये भी एक भूत है, वो भूत है वो उसको समझाओ, ये क्रोध एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध तो कभी नहीं करना चाहिए, सिखलाने वाले में भी क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सिखलाने वाले में क्रोध है तो क्या सिखलाएगा दूसरों को, सिखलाने वाले में भी क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर वार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर क्या करेंगे, अगर ठंडे पुरुषार्थ है पुरुषार्थी है पुरुषार्थ ठीक नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं जरूर अपनी बदनामी करेंगे। देखो ये बाबा का बच्चा कहलाता है लेकिन देखो पाई की भी धारणा नहीं है, तो अपनी बदनामी करते हैं ना, अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं, को निकाल देते क्योंकि इनमें क्रोध का भूत है, हम नहीं रखेंगे इनको। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते, इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी ऐसे महिमा होती है, क्योंकि महिमा का आधार क्या है, उनके कर्तव्यों पर। तो जो जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तो तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो, हर एक अपने आप को जानता है मैं कैसा हूं। तुम सब अंतर्यामी हो, आत्मा अंदर में जानती है। अंतर्यामी बाबा क्या डेफिनेशन देते हैं, आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुमको ज्ञान है, इसलिए अंतर्यामी हो, सबको जान गए हो। उनको कहा जाता है अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं कि भगवान घट घट वासी है वो सबके अंदर को जानता है, नहीं, उनको जानने की क्या दरकार है, हर एक के अंदर में क्या चल रहा है भगवान को जानने की क्या दरकार है, कर्म की गति तो सब जानते हैं, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे, भगवान तो यही कहते हैं जो जैसा करेंगे ऐसा फल पाएंगे, अंदर को जानने की क्या दरकार है, मुझे जानने की क्या दरकार है कि हर एक के अंदर क्या चल रहा है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे, ऐसी चलन चलेंगे तो क्या गति होगी, ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरा वर्ष दूसरे वर्ष में पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए, अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना, ईश्वर लॉटरी देने आए हैं तो पूरी लेनी चाहिए ना लॉटरी। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो, जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब और धर्म वाले कहाँ होंगे, जब भारत सुख धाम होगा तो बाकी सब धर्म वाले शांति धाम में होंगे। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं। तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है, दिवाली आने में अभी बाकी 8 दिन है, तो बहुत खुशी होती है दिवाली अभी आएगी, तो बाकी इतने दिन है, फिर नए कपड़े पहनेंगे, खास दिवाली के लिए नए कपड़े रखते हैं, दिवाली आएगी तो नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे, और हमारा श्रृंगार कौन सा है, गुणों का श्रृंगार, शक्तियों का श्रृंगार, हम वो श्रृंगार करें तो अच्छा सुख पाएंगे स्वर्ग में। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। अब नींद से कब उठेंगे, घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा, अचानक अचानक पता पड़ेगा। ये तो सच कहते थे ब्रह्मा कुमारियां, सच कहती थी, अभी तो घोर निद्रा में है, तो ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे, सच को तब समझे जब सच का संग हो। अब भगवान का संग किया ही नहीं है तो सच को कैसे समझेंगे। उस सच परमात्मा जो ट्रुथ है, सत्य है, उसको उसका संग हो तो अब सच समझ में आए। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत बनते हो किसके द्वारा, सत बाप के द्वारा। वो सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। बाबा ने जगदीश भाई को ये काम दिया था, एक कॉन्ट्रास्ट का किताब छपाओ, भगवान ये कहते हैं मनुष्य ये कहते हैं। तो एक किताब बनी हुई होगी, अभी भी पता नहीं अभी बिक्री होती है नहीं, लेकिन मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का वो अंतर उस किताब में है। तो अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो, ये भगवान कहते हैं ये मनुष्य कहते हैं। आखिरीन विजय तो तुम्हारी ही है, जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वो जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है, निश्चित है, अवश्यम भावी है कि जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वो जरूर पाएंगे। वहां अकालीय मृत्यु तो होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी, पवित्रता नहीं तो आयु भी कम होती जाती है। पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की तो बात शोभती नहीं है कि श्री कृष्ण को सबको पावन बनाएंगे, वो तो स्वयं पावन है, उसको भी उस आत्मा को भी पावन बनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण की तो बात शोभती नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। जब पावन बनाने भगवान को आना है तो श्री कृष्ण कहाँ आएगा पावन बनाने। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं, वो तो सतयुग में था श्री कृष्ण, अभी तो हो ही नहीं सकता वही फीचर्स वाला। 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी, हर सेकंड की एक्टिविटी अलग, तो 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी माना हर जन्म की एक्टिविटी अलग। ये बना बनाया खेल है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, आत्मा छोटी बिंदी है उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना, ये बातें सुनते तो वंडर खाते हैं। तो बाबा कहते पहले ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। ये सब बातें शुरू शुरू में नहीं समझानी है, पहली बात क्या बतानी है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझाने वाले भी नंबर वार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे, पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे, साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी, अब बाबा बच्चों को फिर से ध्यान खिंचवाते हैं, साथ में जो बाबा के साथ यहाँ रहते हैं उनसे भी बांधेलियां ज्यादा याद करती है, बांधेलियां ज्यादा याद करती है, वो ऊंच पद पा सकती है। ये भी समझ की बात है ना, कैसे बांधेलियां ज्यादा ऊंच पद पा सकती है। बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। याद करते रहो, बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी ईविल बोल मुख से नहीं बोलना है। ये आंखें कभी क्रिमिनल न हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो क्या करो, किनारा कर दो। उन्हें प्यार से समझाना है, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, किनारा कर दो। वरदान, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है, त्याग और तपस्या। तो दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू तू मैं मेरा मेरा तेरा न आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, हम सभी बाबा को भोग लगाएंगे। शशि बहन अभी पहुंच रहे हैं।
Thank you. रेनोवेशन हो रहा है तो बस तो आएगी।
नहीं नहीं रेनोवेशन की नहीं है, वो जलाया है अभी।
अच्छा
कुछ जलाया है तो
ओम शांति। आज हम सबका बहुत ही प्यारा दिवस, सतगुरुवार, बाबा के प्यार में खोए हुए, बाबा की यादों में बाबा को साथ लेकर के अमृत वेले से ही बाबा से मीठी मीठी रू रूहान करते हैं। हर बच्चा बाबा से अपने मन की बात करता है और बाबा उनकी विशेष रू रूहान को सुन करके उसका जवाब और उसका अनुभव भी कराते हैं। तो आज हम सब मिलकर के बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और हर एक को आज बाबा के पास जाना है। सब जाएंगे ना, जो बाबा के पास भोग के लिए जाएंगे हाथ खड़ा करो, भट्टी वाले सब, तुम सब बाबा के पास जाएंगे, बाबा आपसे बात करेंगे, आपको अनुभव कराएंगे। तो आज के दिन बाबा के प्यार का अनुभव करना है, किसी को कुछ भी मिस नहीं करना है। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और साथ साथ हमारे पटना सब जोन से भट्टी के भाई बहने आए हैं। पटना सब जोन के भट्टी के भाई बहने हाथ खड़ा करो, इनके लिए ताली तो बजाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पटना यज्ञ के इतिहास में भी एक बहुत विशेष रहा है और पटना ही एक ऐसा स्थान है जहां विशेष हमारी यज्ञ की सब दादियों ने कदम रखा और वहां पर अनेक प्रकार की सेवाएं हुई। दादियों के कदमों से वहां पर ऐसे ऐसे बीज डले हैं जिसका रिजल्ट भी हम सब देखते रहते हैं। और बाबा के टाइम पर और खास करके दादियों के टाइम पर अनेक VIPs वहां पर आते रहे हैं। वो धरनी का भी महत्व है और धरनी में अब जो नए फूल आए हैं उनका तो अपना ही महत्व है। तो बाबा तो ऐसी धरनी ऐसे बगीचे को देख करके कितना न खुश होते हैं। और जब भोग का संदेश पूरा होगा, दो मिनट के लिए हमारी पटना की संगीता बहन उनके साथ ही मंच पर आएंगे और उनके मन में एक शुभ आश है, वो आश है, कर तो क्या सकते हैं, बाबा के घर में सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी आशा है दोनों दीदियों का सम्मान करेंगे। और उसके बाद अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की होगी और दो लाइनें बच्ची की टीचर्स बहने और माताओं की होगी। एक लाइन अमृत के लिए भाइयों की वहां और एक लाइन बच्ची की माताओं की इस तरफ भाइयों की तरफ, दूसरी लाइन यहाँ जो कैमरा रखा है वहां पर और दो लाइनें अन्य बहनों की अमृत पीने के लिए होगा। और अभी हम सब मिल करके बाबा के पास जाते हैं और बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। ओम शांति। और अमृत पिलाने के लिए हमारी जैसे भाइयों को बिन्नी बहन और भट्टी की बहनों को
हमारी बिंदु बहन जो कि सिरसा से आई है, और संगीता बहन पटना की, और बाकी मंजू बहन और त्रिवेणी बहन अमृत पिलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों
यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो क्या देखती हूँ, बहुत दूरी पर बाबा कुछ ऐसे दृश्य देख रहे थे, कहाँ पर चारों ही तरफ सुंदर वातावरण था और कहाँ पर उथल पुथल थी, कहाँ पर भगत लोग पुकार रहे थे और कहीं पर लोग दुख से इधर उधर भाग रहे थे, और बाबा उस दृश्य को देख करके बाबा को भी बहुत उनके ऊपर रहम आ रहा था। फिर दूसरी तरफ मैंने क्या देखा, एक बहुत सुंदर कमरा के टाइप था, उस कमरे के अंदर एक तरफ ज्वाला छोटी सी ज्योति थी और उस ज्योति से बहुत सुंदर किरणें निकल रही थी, दूसरी तरफ ऐसा दृश्य था ज्योति एक ज्योति के साथ अनेक छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, और तीसरी तरफ देखा कि ऊपर की तरफ से एक बहुत बड़ा पावरफुल लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा था, तो बाबा उसको भी देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, बाबा ने कहा आओ बच्चे, तो मैंने कहा बाबा आज आप क्या देख रहे थे, बाबा ने कहा एक तरफ सृष्टि की हालत, भय दुख अशांति पुकार ये आज सृष्टि की हालत है, कहीं पर उथल पुथल है, लोग दुख से चिल्ला रहे हैं और कहीं पर वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, जितना वो करते हैं उतना ही वो बिगड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ बाबा अपने बच्चों को देख रहे थे कि कई बच्चे अभी एक छोटा सा लाइट दीपक की तरह जग रहे हैं, कई बच्चे दीपक से बढ़ करके पावरफुल लाइट, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने संगठन को ऐसा मजबूत करके उसके द्वारा पावर अनुभव करते हुए और दूसरों को भी वो पावर दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों का जो मेन पावर हाउस है उससे कनेक्शन कभी जुटता है, कभी कम होता है, कभी ना के बराबर होते हैं। तो मेरे बच्चे भी दुनिया की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उनकी लाइट तेज और कभी उनकी लाइट कम होती है, जिस कारण से कभी अनुभूति कम कभी ज्यादा। और जो विश्व परिवर्तन का कार्य बाप ने दिया है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ढीलापन आ जाता है। तो फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को इमर्ज किया तो बाबा ने कहा पूरे विश्व को देखो, पूरे विश्व को देख करके क्या करना है। बाबा ने कहा बाप बच्चों को इष्ट देव के रूप में देखते हैं, विश्व भी इष्ट रूप में देख रहा है, तो बच्चों को अब क्या करना है। तो उसी समय बाबा ने बच्चों को कहा कि जाओ इस विश्व के अंदर क्या करना है। तो सब बच्चे एकदम फरिश्ते बन जाते थे और हर एक के पास एक लाइट का जैसे टॉर्च होता है ना, वो टॉर्च लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे वो टॉर्च लेकर के जाते हैं हर एक फरिश्ते की टॉर्च में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगता है। तो बाबा ने कहा ये अंतर क्यों आया, क्यों अंतर आया जबको तो जबकि सबको एक जैसा दिया है। तो बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ में उड़ते उड़ते अपने स्वमान से नीचे आते हैं तो वो जो बाप ने शक्ति दी है उसके अंदर थोड़ा कमी आने लगती है। तो बाबा ने कहा बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी स्वमान से नीचे नहीं आए, और बाबा सारे विश्व के सामने बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो बाप तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं लेकिन स्वमान की सीट से उतर जाते हैं। फिर बाबा ने दोबारा बच्चों को ऐसे हाथ से किया, सब फरिश्ते थे और सबके हाथ में एक बहुत सुंदर लाइट थी, और लाइट लेकर के जैसे वो विश्व के अंदर भ्रमण करते हैं तो लोगों को बहुत कुछ अनुभव होते हैं, जैसे उथल पुथल शांत होने लगती है, ईष्ट को अपने पा करके वो खुश होने लगते हैं। तो उनको लगता है कि कोई हमारी पुकार सुनने वाला है। तो बाबा ने कहा अब समय है कि लोगों को ये अनुभव हो कि हमारा कोई रक्षक है, हमारी पुकार सुनने वाला है और हमें अनुभव कराने वाला है, तब जा करके बाप की प्रत्यक्षता और विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। फिर बाबा ने उसी कमरे के अंदर जो अलग अलग लाइट्स चल रही थी वो लाइट्स को ऐसा स्वरूप दिया जैसे कि चमकते हुए सितारे थे और वो सितारे जगमगा रहे हैं, और उन सितारों के द्वारा चारों तरफ ऐसी लाइट जा रही थी। बाबा ने कहा अब समय है कि विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलाने का, विश्व की सेवा और परिवर्तन के लिए बच्चों को विशेष अपनी स्वस्थिति और बाप के द्वारा जो प्राप्ति है वो अनुभव कराने का। तो मैंने कहा बाबा सो स्थिति में क्या करें, तो बाबा ने कहा बच्चों को कहो एक तो खुशी में रहें कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही हमारा बैकबोन है। तो ऐसे बाबा ने उनको जैसे सारा विश्व दिखाया जिसके अंदर हर एक बच्चा ये अनुभव कर रहा था मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा समय बहुत ही नाजुक आ रहा है, लेकिन उस नाजुक समय से बचने के लिए बाबा ही मेरा संसार है। फिर जब तक मैं बाबा को कहूँ कुछ, बाबा ने कहा पता है आज बाबा को खुशी है, बाबा के पास ऐसे बच्चों को बाप ने बुलाया है जो सेवा के क्षेत्र में ऐसे स्थान से आए हैं जहाँ पर यज्ञ के सब महारथी और यज्ञ के जो स्थापना के आधार मूर्त हैं वो उस धरनी पर कदम रखा है जहाँ पर उन्होंने उनके कदमों के द्वारा ऐसे ऐसे बीज डाले हैं जो कि वहाँ बहुत सुंदर बगीचा बना है। तो बाबा ने एक ऐसा बगीचा दिखाया जिसमें पटना और सभी आसपास सेंटर के जितनी भी सेवाएं हुई हैं पूरे बिहार उड़ीसा में वो भी सामने। तो बाबा उनको बहुत प्यार कर रहे थे और बहुत खुशियों के झूले में झूला रहे थे। बाबा ने कहा बाबा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है। फिर जिनके निमित्त भोग था बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने भी उन्हें याद प्यार दिया। अच्छा ओम शांति।